हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 34। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवनाकसादया, येने च पापा यदपाश्रयाशया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो नापरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृन्द,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 34। शुक्ते को स्वामी कहते हैं, भगवान ब्रह्म काष्ठेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया यदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म काष्ठेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म काष्ठेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। शब्दार्थ, भगवान ब्रह्म काष्ठेन, भगवान यानी महापुरुष ब्रह्मा जी, ब्रह्म यानी वेद, काष्ठेन मतलब संक्षिप्तीकरण द्वारा, तीन बार अन्वीक्ष परीक्षा करके, मनीषया अत्यंत ही विद्वत्ता पूर्वक, तदध्यवस्यत कूटस्थो, अध्यवस्यत का मतलब होता है निश्चित किया, कूटस्थ मन की एकाग्रता से, रतिर आत्मन यतो भवेत, रति मन आकर्षण, आत्मन यानी भगवान श्री कृष्ण में, यतो यानी जिसके द्वारा, भवेत ऐसा होता है। अनुवाद, महापुरुष ब्रह्मा जी ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत ही मनोयोग से वेदों का तीन बार अध्ययन किया और उनकी भलीभांति संवीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण यानी रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी वेदों के सर्वपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो भगवान के गुणावतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया था, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का तीन बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा और सारी विधि की सम्यक परीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उपदेश भी यही है, जिससे स्वयं भगवान ने दिया है। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध है वे वेद वादरता लोग हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.42 में कहा गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं कुरुतु वाचालं पंगु लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं।
ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसा कि हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 33 में पढ़ा था, न ह्यतो न्यः शिवः पन्था विशतः संस्कृताव्यः वासुदेव भगवती भक्ति योगे यतो भवेत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था भगवान वासुदेव की भक्ति भक्तिमय सेवा करने के अतिरिक्त और कोई भी शिवः पन्था यानी और कोई भी कल्याणकारी रास्ता हो ही नहीं सकता। इस भौतिक जगत में जो जीव भटक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहे हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से बढ़कर मोक्ष का और कोई अधिक कल्याणकारी साधन है ही नहीं। उनको क्या करना चाहिए? केवल और केवल वासुदेवे भगवती भक्ति योग यतो, केवल भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए और कुछ भी उनके लिए शिव नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो यहाँ पर मानो वहां तो बहुत सारे साधु बैठे हुए थे, तो सुखदेव गोस्वामी से कोई पूछ सकता था कि क्योंकि वहां पर विभिन्न पंथों के साधु बैठे हुए थे, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। जब सुखदेव गोस्वामी ने सारे दूसरे पंथों को निष्कर्ष कर दिया, ज्ञान मार्ग है ना, ध्यान मार्ग, अष्टांग कर, योग मार्ग, सबको जब उन्होंने निष्कर्ष बता के केवल भगवान की भक्ति को ही जोड़ दिया, तो फिर कोई उनसे पूछ सकता है कि आप इतना जोर दे के भक्ति की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? दूसरे भी तो बहुत सारे मार्ग हैं, वेदों में तो कितने सारे मार्ग बताए गए हैं, तो आपके पास क्या प्रमाण है कि केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने का मार्ग ही सर्वोत्तम है, केवल कृष्ण की भक्ति करने का मार्ग कल्याणकारी है, दूसरे मार्ग क्या ऐसे ही है, फिजूल है, उनके बारे में कोई भी आपने प्रशंसा नहीं की, खाली भक्ति मार्ग की ही प्रशंसा कर रहे हैं? तो एक बार फिर वो ब्रह्मा जी का अत्यंत ही सुंदर उदाहरण देते हुए यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान ब्रह्मा, आप मुझसे प्रमाण पूछ रहे हो ना, तो सबसे बड़ा प्रमाण वो ब्रह्मा जी जिसको यहाँ पर भगवान कहा गया, मतलब पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ जीव यदि कोई है वो है ब्रह्मा जी। वो भगवान के गुणावतार भी हैं, भगवान रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा जी के स्वरूप में आकर जीव का सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और ना ही उन्होंने किसी साधारण व्यक्ति से ज्ञान प्रदान प्राप्त किया, साक्षात भगवान ने उन्हें हृदय में ज्ञान दिया। भागवत साक्षी है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वो जीव जिसको साक्षात भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, वह जीव जिसको भगवान के साक्षात दर्शन हुए और उसको भगवान ने संपूर्ण वेदों का ज्ञाता बनाया और उसके साथ साथ ब्रह्मा जी को बहुत ही तीव्र बुद्धि, ब्रह्मा जी जैसे साधारण जीवों का एक सिर होता है, एक बुद्धि होती है, हमारे इस पृथ्वी लोक के ब्रह्मा जी के पास चार चार सर हैं, चार चार मस्तक हैं, तो मतलब चार चार बुद्धि है उसके पास। तो ऐसे भगवान ब्रह्मा जी काश्यन त्रिरन वीक्ष्य, त्रिरन का मतलब होता है तीन बार, अनवीक्ष्य मतलब परीक्षा की, तीन बार एक एक शब्द की, वेदों में जितने भी शब्द हैं, अब उनके पास तो समय भी है, बहुत ज्यादा है। जैसे आप सब जानते हो कि ब्रह्मा जी का एक दिन इस पृथ्वी लोक के 4,32,00,000,000 वर्षों के बराबर है, तो एक दिन में उनके पास इतना सारा समय है, तो वो बहुत ही अधिक मात्रा में हमसे कार्य कर सकते हैं। हम इतना कार्य नहीं कर सकते हैं, हमारे पास तो सिर्फ 24 आवर्स होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पास एक तो बुद्धि बहुत ज्यादा है और उसके पास बहुत सारा समय। हम क्या बोलते हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो पता चला अब तो ये टाइम खत्म हो गया, अभी तो आज का दिन ही खत्म हो गया, चैप्टर शुरू किया था और दिन खत्म हो गया, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, त्रिरन वीक्ष्य, तीन बार एक एक वेद के शब्द को गौर से पढ़ा, बहुत ही ध्यान से, मनीषया, मनीषया मतलब अत्यंत ही विद्वत्तापूर्ण, ऐसा नहीं खाली रीडिंग कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बस ऐसे ही वेदों को एक एक करके, सिर्फ रीडिंग ही नहीं किया बल्कि एक एक शब्द को गौर से पढ़ा और उसको बुद्धि के द्वारा समझकर जैसे बताया त्रिरण वीक्ष मनीषया बहुत ही सुंदर तरीके से उसको एक एक शब्द के ऊपर जांच की। वो जानना चाहते थे कि वेद का सार क्या है, सारे वेदों के सार को निचोड़ को वो जानना चाहते थे। और मतलब एक दफा तो पहले ही उनको भगवान ने वेद सारे हृदय में ज्ञान दे दिया था, तो उनको कंक्लूजन पता था। वेदों का कंक्लूजन जानने के बावजूद भी यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया था, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का तीन मतलब कि आगे आने वाले उन्होंने तो अपनी तरफ से पहले से ही कंक्लूजन निकाल दिया था। क्या है वेदों का कंक्लूजन? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान गोविंद की भक्ति करना। और इसके अतिरिक्त और कोई वेदों का कंक्लूजन है ही नहीं, कोई वेदों का सार है ही नहीं, लेकिन फिर भी भावी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए वापस से उन्होंने तीन बार वेद के एक एक शब्द की जिज्ञासा करने के बाद तदध्यवस्यत का मतलब होता है अध्यवस्यत का मतलब निश्चित किया, उन्होंने निर्णय दिया, एक निर्णय करके एक मत दिया, निश्चय एक बात बताई। कूटस्थो का मतलब होता है कि उन्होंने जब वेद पढ़े थे तो बिल्कुल परम एकाग्र चित्त से। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं तो कैसा होता है, कभी फोन आ जाता है, कभी किसी का मैसेज आ जाता है, कभी दरवाजे पे डोरबेल बजती है, कभी भूख लगने लगती है तो वो संक्षिप्त हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस हो जाती है, कभी कोई बुला लेता है। अभी आधा चैप्टर पढ़ते हैं, मैं श्लोक की तैयारी करती हूँ, अचानक से कोई आ जाता है, फिर आधा श्लोक में भूल जाती हूँ सुबह को क्या पढ़ा था, फिर वापस। या फिर ये कि हम लोग इस भौतिक जगत में जब स्टडी कर रहे होते हैं, कोई आ जाता है, कोई डिस्टर्ब करता है, कोई ख्याल आ जाता है, बैठ जाते हैं तो कुछ है ना। कभी कभी ऐसा होता है देर तक हम लोग पेज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि बुद्धि इधर उधर होती है, बुद्धि एकाग्र नहीं होती है ना, तो फिर हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमने क्या पढ़ा है, फिर समझ में आ रहा नहीं होता है कि ये क्या है। लेकिन ब्रह्मा जी की बुद्धि ऐसी नहीं है, ब्रह्मा जी परम एकाग्र चित्त से कूटस्थो मतलब कि कोई भी चीज उनको डिस्टर्ब करने वाली नहीं थी। वो ऐसी जगह पर रहते हैं ना जहां पर उसको उनको कोई डिस्टर्बेंस है और ना ही कोई और उनको उनके कार्य से विचलित कर सकता है। हम लोग कैसे विचलित होते हैं, कभी क्रोध आ जाता है, कभी है ना हम ऐसा लगता है थकावट महसूस होती है, कभी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो उनके इस ब्रह्मलोक में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है और उन्होंने एकदम एकाग्र चित्त से बहुत ही मनीषया बहुत ही सुंदर बुद्धि के साथ गौर से एक एक शब्द को पढ़ा। और उसके बाद अध्यवस्यत यानी निश्चय क्या दिया, उसका निर्णय क्या दिया, रतिरात्मन यतो भवेत। रति मतलब प्रेम उत्पन्न हो जाए, रति उत्पन्न हो जाए, आकर्षण उत्पन्न हो जाए, किसके अंदर, आत्मनी का मतलब है भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। शास्त्र साक्षी है कि वास्तव में हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये ईश्वर है, वो भगवान है जो हमारे हृदय में रहता है। भगवान कौन है? कृष्ण है। और उसी के द्वारा वही आत्मनी है यानी हमारी आत्मा का स्रोत है। जिस तरह हमारा शरीर हमारी आत्मा के द्वारा चेतना प्राप्त करके कार्य करता है, उसी तरह हमारी आत्मा जो है वो भगवान के द्वारा पावर प्राप्त करके कार्य करता है। तो कृष्ण जो है वो संपूर्ण जीवों की आत्मा है, जीव की आत्मा यानी परमात्मा यदि कोई है तो वो कृष्ण है। इसलिए उनको कहा रतिर आत्मनी यतो भवेत कि वो कार्य जो कार्य करने से भगवान श्री कृष्ण में रति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, वही वेद का सार है। उन्होंने ये निश्चय दिया, तदद्यवस्यत्कूटस्थो रतिर आत्मन यतो भवेत। ब्रह्मा जी ने समस्त वेदों को जब तीन बार पढ़ लिया, तब उन्होंने एक निर्णय दिया कि सारे वेदों का कंक्लूजन क्या है, उसका सार क्या है, कि जीव को केवल वही कार्य करना है। वेदों में जीव को केवल वही कार्य करने के लिए आज्ञा दी गई है जिस कार्य करने से भगवान के अंदर प्रीति उत्पन्न हो, और वो सारे कार्य जो भगवान से दूर करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करने की हमें चेष्टा नहीं होती है, वो कार्य जिससे भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं होती है, वो कार्य नहीं करने हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ वेदों का कंक्लूजन यही है, क्या क्या करना है, कि सिर्फ वही कार्य करने हैं जिससे भगवान के अंदर रति उत्पन्न हो। और रति वो कौन से कार्य हैं जिनसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा? तो चैतन्य कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, श्रवण कीर्तन जले करे रे सिंचन। भगवान और कृष्ण और है ना गुरु की कृपा से आपको भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हो गई, समझो हृदय के अंदर वो कृष्ण भक्ति का बीज बो लिया, और वो प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? माली हन्ना करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन न जले करे रे संचन। हमें माली बनकर उस बीज का आरोपण करना है, उसको सींचना है, और उसका एक ही तरीका है, श्रवण और कीर्तन का जल। जैसे जैसे हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम के एक एक शब्द में कृष्ण प्रेम का अथाह समुद्र है। वो तो कोई योग्य व्यक्ति जब हम किसी के द्वारा सुन रहे होते हैं, तो वो अगर प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसमें पूरा का पूरा उस व्यक्ति का दोष है जो कि सुना रहा है, या तो फिर उस व्यक्ति का जो कि सही से सुन नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने से ही कृष्ण में रति उत्पन्न होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, हृदय के अंदर से सारे अनर्थ नाश होंगे। और इसी भाव से हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करना है, और यही जीव का वास्तविक कर्तव्य है। सारे वेदों में बताया गया, सारे वेदों का यही सार है कि आप वही कार्य करो जिससे कृष्ण में रति उत्पन्न हो, और वो कार्य है भगवान के प्रति श्रवण करना, भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण करना। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तभी तो 88,000 ऋषि मुनि समस्त कार्यों को छोड़कर भागवतम श्रवण करने के लिए बैठ गए, तभी तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को केवल एक ही आदेश दिया कि बैठो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इसी से तुम्हें से तुम्हारी सदगति होगी। इतना हृदय के अंदर विश्वास होना चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो श्रवण कर रहा हूँ वही जीव का एकमात्र वास्तविक कार्य है, करना यही है, क्योंकि इसी से प्रेम उत्पन्न होगा, इसी से भगवान के प्रति रति उत्पन्न होगी। और क्या ब्रह्मा जी ने तो ये निर्णय दे दिया कि रति आत्मनि यतो भवेत, वही कार्य करना है जिससे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, यही समस्त वेदों का एकमात्र सार है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यही श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम श्लोक का सार है। अंतिम श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में यही बताया गया कि अंतिम उपदेश तो यही है कि सारे धर्मों को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है, और ये करने से कोई अपराध नहीं है, बल्कि हमारे सारे अपराध जितने भी होंगे भगवान उन्हें नष्ट कर देंगे। भगवान कहते हैं, अहम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, सारे अपराधों को समाप्त कर दूंगा, केवल तुम्हें क्या करना है, मेरी शरण में आना है। तो यही वास्तव में वेदों का सार है जो ब्रह्मा जी, और यहाँ पर बताया कि इसके अतिरिक्त जो है श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध हैं वे वेदवादरता लोग, जैसा कि श्रीमद् भागवत भगवत गीता में 2.42 में बताया गया कि यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त विपश्यत वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य पर भोगेश्वर्य कतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म और शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। वेदों में और भी बहुत सारी बात है, तो जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं वो तो यामिमां पुष्पितां वाच उन्हीं की फ्लावरी वर्ड्स की ओर आकर्षित होते हैं कि ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्त होगा, ये करेंगे तो हमें ना अच्छा जन्म प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी और ये सब बातें बताई जाती हैं वेदों में भले ही, लेकिन फिर भी वेदों का वास्तविक लक्ष्य क्या है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे वचाहम। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों में यदि कुछ जानने योग्य है तो केवल मुझे जानना है, और यही बात ब्रह्मा जी बताते हैं कि सारे वेदों को बहुत ही अच्छी तरीके से जब उन्होंने पढ़ लिया उसके बाद निष्कर्ष क्या निकाला, रतिर आत्मन यतो भवेत। और इसी बात को सुखदेव गोस्वामी ने हमें कल बताया कि केवल एक ही रास्ता कल्याणकारी है, न यतो न्यः शिव पंथा विशतः संस्रिताव्यः वासुदेवः भगवती भक्ति योग यतो भवेत। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही एकमात्र जीव का कल्याणकारी कार्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और क्या करना है भगवान की भक्ति में इस कलयुग का, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एक ही काम करना है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलई वनास्तई 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 वगतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एकमात्र साधन है, इसके अतिरिक्त कलयुग का और कोई साधन नहीं है। तो उस हरि के नाम में भी प्रीति कब उत्पन्न होगी, जब हम हरि से प्रेम करेंगे, हरि की कथाओं को श्रवण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।